26 अप्रैल ऋषभ विहार जैन स्थानक दिल्ली। लोक की असलियत। जनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी मा सा लोन्सी जान अहियाय दुख समयम लोगसे जानिता इत्यम सत्थोवय सद्दाय रसाय गंधाय फासाय अभिस्मना गया भवंती। हे शिष्य, लोक को जान, जो अहित के लिए है दुख के लिए है। इस शस्त्र से अर्थात हिंसा से समता के साथ विरत हो जाओ। जिस मुनि के शब्द रूप रस गंध स्पर्श अभिस्मनवागत होते हैं वही शस्त्रों से उपरत मुनि होता है। यह प्रभु महावीर की वाणी है। प्रभु महावीर ने सर्वप्रथम कहा लोयंसी जान लोक को जानो। लोक क्या है? लोक आपको कितना भी प्रिय लगे सुखदायी लगे लेकिन उसका रिजल्ट दुखदायी है। फिर भगवान ने कहा हियाय दुखल लोक की पकड़ अहितकारी है दुखदायी है। मुंबई के डायमंड बाजार में हर रोज करोड़ों का टर्नओवर होता है। करोड़ों रुपए आते हैं, वहाँ रुपए नहीं बोले जाते, वहाँ एक खोखा दो खोखा द्वारा बतलाया जाता है। कितने रुपए हैं यदि बोल दिए दो खोखा तो वो 2 करोड़ रुपए होते हैं। जिसे वे चेक नहीं करते वहाँ गिनने का टाइम नहीं है, 2 नंबर का धंधा विश्वास पर चलता है। लेकिन यही काम धर्म के नाम पर हो तो घोटाले हो जाते हैं। मुंबई में दान की बात चली, लोगों ने दान भी दिए लेकिन कुछ लोगों ने उन रुपयों में नकली नोट मिलाकर दान दे दिया। बैंक में जब लोग रुपए जमा कराने गए तब परेशानी खड़ी हो गई। धर्म के साथ धोखा, कैसे हालात हो गए हैं। इसीलिए कहा है लोयंसी जान लोक को जानो। ना रुपयों में सुख है, ना मकान में, ना पत्नी, ना ही बच्चे सुख देने वाले हैं। यह सभी दैख देने वाले हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है अहियाय दुख यह अहितकारी है। अतः तू लोक को जान ले। कैसे जान ले? क्या मर जाए? मर भी जाए तो भी लोक से बाहर नहीं जाया जा सकता है। आत्महत्या कर ले तो भी लोक से हटा नहीं जा सकता बल्कि लोक को बढ़ा लेते हैं। आत्मघाती महापापी होता है। लोक को जानने के लिए भगवान ने आगे फरमाया समयम लोगस जानित्ता लोक के समय को जानो। लोक का समय अर्थात सिद्धांत समता आचार को जान जाओ। परिवार तुम्हारा ध्यान रखे या ना रखे समता से जीना सीख जाओ। एक बेटे ने नई फैक्ट्री लगाई लेकिन उसने पिता को नहीं बताया। यदि आपके साथ ऐसा हो जाए और आपको आपका फ्रेंड आकर बताए कि आपके बेटे ने फैक्ट्री लगाई है तो आप क्या करेंगे? आपको क्रोध आएगा, मुझे नहीं बताया, मुझसे नहीं पूछा। आपका ईगो टकराएगा। लेकिन वो पिता समयम लोए जानित्ता लोक के समय को जानने वाला था, समताधारी था। उसने कहा अच्छा हुआ नहीं बताया, जिससे फैक्ट्री से होने वाली क्रिया मुझे नहीं लगेगी। दूसरी बात, यदि घाटा हो गया तो वो मुझे कहने लायक नहीं रहा। तीसरा लाभ मुझे यह होगा कि यदि उसे फैक्ट्री में प्रॉफिट हुआ तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि मेरा बेटा मेरे जीते जी होशियार हो गया। इसे कहते हैं लोक को जानने और पहचानने का तरीका। हमारी आदत ही खराब हो गई है। सास बहू को पूछे यह साड़ी किसने दिलाई, गहने अंगूठी किसने दिलाई। बार बार पूछेगी तो वह कहेगी पीहर से लाई। यह गलती सासू की है जो झूठ बुलवाती है और अपना ही पैसा बहू के मायके पहुंचा रही है। यदि आप इसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले कि यह गहने आपके बेटे ने दिलवाए तो माल और पैसा दोनों सुरक्षित रह जाएंगे। व्यवहारिक जीवन को जीना सीख जाए। भगवान ने इसे समयम शब्द से समझाया है। भगवान ने आगे फरमाया है इत्थ सत्थो वय शस्त्र उपरत यानि अटैचमेंट से ऊपर हो। सद्दा य रसा य गंधा य फासा य अभिस्म न गया भवंती। शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श से ना लगाव हो और ना ही अलगाव। दुनिया में जियो तो समता से जियो, लोक को जानो। शॉर्ट में लोक को जान लो हमारा लोक का नक्शा है। उस नक्शे में नीचे लिखा होता है परस्पर उपग्रह जीवानाम। आपके पैर में कांटा चुभा है तो वह सीधा संकेत हमारे दिमाग को देता है। दिमाग आँखों को कहता है नीचे देखो और हाथों से कांटा निकलवाता है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग एक दूसरे से जुड़कर कार्य करते हैं। उसी तरह आप सबको भी चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग करें। एक चौके में जितने लोग खाना खाते हैं वो सभी मिलकर एक लोक है। उसी तरह जितने साधु एक साथ रहते हैं, जितनी साध्वियां एक साथ रहती हैं, वह एक लोक है। जिस लोक में आप जीवन जीते हैं, जिनके बीच में आप रहते हैं वो लोक है। वहां सभी को परस्पर सहयोग करना चाहिए, समता से जीना चाहिए। समतापूर्ण व्यवहार आपकी जिंदगी को सुखदायी बना देगा। एक दूसरे के साथ यथायोग्य व्यवहार आपको सिद्धि तक ले जाएगा। सिंपल ड्रेस है, मूल्यवान भी नहीं है, लेकिन पहनने का सलीका सही है तो वो सुंदर लगने लगता है। कपड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, महिला के पहनने का तरीका महत्वपूर्ण है। उसी तरह लोक महत्वपूर्ण नहीं है, जीने का तरीका महत्वपूर्ण है। एक किंवदंती है, देवलोक में एक बार अराजकता फैली हुई थी। कोई देवता चोरी कर लेता, कोई लड़ाई झगड़ा करता था, कोई देवता अन्य देवताओं को परेशान करते थे। ब्रह्मा जी इससे बड़े परेशान हो गए। उन्होंने इसका समाधान निकाला। उन्होंने सभी देवताओं को खाने पर बुलाया। दो विभागों में देवताओं को बांटकर अलग अलग खाने के लिए पगंत पर बिठाया। देवता खाना खाने बैठे। जब वो कौर मुंह की ओर ले गए तब उन्हें पता चला कि हाथ कोहनी से मुड़ता नहीं, अब क्या करें। सोचने लगे तब उनमें से एक देवताओं का दल समझदार था, समयम अर्थात लोक को जानने वाला था, परस्पर सहयोग को समझता था। सभी देवताओं ने सोचा, हमारा हाथ हमारे मुंह में नहीं जाता पर सामने वाले के मुंह में तो जा ही सकता है। सभी एक दूसरे को खिलाने लगे। सभी ने अच्छे से खाना खाया। दूसरे दल के सारे देवता भूखे उठ गए, क्योंकि वह सामने वाले को खिलाना नहीं चाहते थे। वे सभी देवता ब्रह्मा जी के पास हंगामा करने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या हुआ? दूसरे दल के देवता बोले, अगर हमें खिलाना ही नहीं था तो बुलाया क्यों? तभी ब्रह्मा जी को देवताओं का पहला दल आता हुआ दिखा। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता थी। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम्हारी प्रसन्नता का राज क्या है? क्या तुमने खाना खा लिया है? पहले दल के देवताओं ने कहा, खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम्हारे हाथ मुंह तक पहुंच गए? देवताओं ने कहा, हमारे हाथ मुंह में नहीं पहुंचे तो क्या हुआ, सामने वाले के मुंह तक तो पहुंच ही रहे थे। हमने आपस में खाना खिला दिया। तब ब्रह्मा जी दूसरे दल के देवताओं से बोले, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? देवता बोले, हम क्यों खिलाए दूसरों को, हम अपना पेट भरेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ही दुष्ट हो, तुम दानव हो जो परस्पर सहयोग को नहीं जानते। आज से 50 वर्ष पूर्व लोग खिलाकर खाना खाते थे, पर आज की महिलाएं एक अतिथि को भी ढंग से खाना नहीं खिला सकती। इसलिए भगवान ने कहा है, लोक के समय आचार व्यवहार को जानो। एक प्रोफेसर जब क्लास में आया तो उसने एक लड़के का उतरा हुआ चेहरा देखा और उसे देखने से यह भी समझ गए कि इसका पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा है। प्रोफेसर ने लड़के को घर पर बुलाया। वह लड़का प्रोफेसर के घर गया। प्रोफेसर ने उसे बिठाया और उससे बातें करने लगे। लड़के ने बताया, अतीत की बातों को लेकर तेरा मन परेशान रहता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद प्रोफेसर ने उसके लिए शिकंजी मंगाई। लड़के ने जैसे ही शिकंजी पी उसका मूड बिगड़ गया। उसने सर को कहा, यह बहुत खारी है। प्रोफेसर बोला, इसे फेंक दो, नई बनाकर लाता हूँ। लड़का बोला, नहीं सर जी, इसमें थोड़ी शक्कर और मिला दो, इसे मत फेंको। प्रोफेसर बोले, इसी तरह जिंदगी के खारेपन में थोड़ी सी शक्कर डाल दो। इसी तरह पति पत्नी परिवार के बीच खारापन अर्थात कड़वाहट है तो उसमें बोली चाली से व्यवहार से मधुरता घोल दो तो सब सही हो जाएगा। अच्छे काम भी करते जाए। आप सोचे, पैसे कमाए हैं और ये पैसे लोग किसी भी उपाय से लूट लेंगे तो क्यों ना हम दान दे दें? शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा तो क्यों ना महाराज बनकर तन को सार्थक कर लूं? अपनी वस्तु का सदुपयोग करना सीख जाए। शब्द रूप गंध रस स्पर्श को सही रूप में जान लिया और लोक को समझ लिया, समता रख ली तो समझो वह तिर गया। इस लोक को समता पूर्वक जानो। समय का अर्थ आचार परक भी है। आचरण के साथ आगे बढ़ो। किसी प्रकार के वर्ण गंध रस स्पर्श के आकर्षण में मत पड़ो, तो ही शस्त्रों परत मुनि बनकर मोक्षगामी हो सकोगे। इसी कड़ी में आज के युग के भी अनेक प्रसंग है। उसमें से महासाधवी श्री ललिता श्री जी मां सा, जिनका चातुर्मास आपके ऋषभ विहार में हो चुका है, जमुना पार में 3 चातुर्मास हुए हैं, जिससे जन जन परिचित एवं प्रभावित हैं। आप भी गृहस्थावस्था में 7 पीढ़ियों में 4 भाइयों में पहली लड़की आई हैं। इससे पहले वंश में लड़की हुई नहीं। अगर कभी हो भी गई तो टिकी नहीं। जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी ने इनका नाम लड़के वाला रखा, भीकमचंद, यानी कि लड़की को भी भीख मांग कर लाए हैं, क्योंकि लड़की टिकती नहीं थी। फिर बड़े लाड प्यार से पाला तो आगे जाकर लाड कंवर नाम हो गया। ऐसी स्थिति में लोक का यथार्थ स्वरूप समझकर संसार को त्याग कर संयम जीवन स्वीकार कर लिया और आप श्री के संयम का यह 50वां वर्ष गतिमान है। आप विद्वत्ता में, प्रवचन में, अध्ययन अध्यापन में, सेवा में, सभी में अग्रगामी रही हैं। सतिया जी, संतों के सामने नीचे बैठे यह कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। श्रावक श्राविकाओं के बराबर सतिया जी को बिठाना एक ढंग से सहुनीन अशातना होती है। इसलिए ऐसी परंपरा को रूपांतरित करने के लिए वर्षों पूर्व सतिया जी के प्रवचन में पट्टे पर बैठने की इच्छिक परंपरा कर दी गई थी। फिर जिनका संयम 50 वर्ष पूर्णता की ओर गतिमान है, उनके अनुमोदना स्वरूप हम गुणगान और अहोभाव प्रकट कर सकते हैं। इनकी संयम की श्रेष्ठता दूसरों के लिए प्रेरक बने, इसके लिए प्रवचन में चौकी पर बिठाना उचित है। इतना सुनते ही चतुर्विद संघ में जय जयकारों के साथ साध्विया जी ने भक्ति गीत गाते हुए पूर्ण सम्मान के साथ महासाध्वी जी को चौकी पर विराजमान कर संयम को जनता में प्रतिष्ठापित किया। आचार्य भगवन संयम का महत्व बताते हुए जिनको संयम लेने की प्रबल भावना हो उन्हें खड़े होने के लिए कहा। आचार्य श्री जी की समझाइश में वो जादुई प्रभाव था कि करीब 16 भाई बहन जल्दी दीक्षा लेने के लिए खड़े होकर संकल्पबद्ध हुए। इसके अलावा भी कईयों ने गुप्त रूप में भावना दर्शाई है। यही है आचार्य श्री के संयम एवं व्यक्तित्व का अनूठा प्रभाव। स्थानीय महामंत्री श्री अशोक जी जैन ने भविष्य में होने वाली दीक्षाएं भी ऋषभ विहार हो, इसके लिए सभा की ओर से विनती रखी। इसी तरह दया दानवीर श्री अरिदमन जी जैन ने भी दीक्षा का उत्सव स्वयं की तरफ से कराने की भावना रखी। महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक श्री पवन जी जैन ने दान की घोषणा की। इसी तरह पक्षियों के प्रस्तावित 25 मंजिल के टावर के लिए 1,00,000 का दान श्री नीलिमा जी के हाथों से कराया। श्री पवन कुमार जी साहब पत्नी को संयम और पैसा दोनों ओर से खुले हाथ से दान देने में लगे हैं। ऐसे वीर व्यक्तित्व के धारी लोग बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। सदाबहार व्यक्तित्व स्थानीय प्रधान श्री अशोक जी जेचंदा ने सारे सभा की ओर से अनुमोदना की। पूरा जमुना पार का इलाका धर्म में दीक्षा में होता जा रहा है। प्रवचन के पश्चात तीनों मुमुक्षों बहनों का बड़े त्याग और नियम संकल्प के साथ सैकड़ों भाई बहनों ने अभिषेक किया, जो कि सब लोगों ने पहली बार देखा, एवं त्याग तप के साथ अभिषेक करने का दुर्लभ लाभ प्राप्त किया। आज मध्याह्न में प्रतिदिन की भांति भक्ति गीत एवं धन्ना शालीभद्र के जीवन पर भव्य नाटक प्रस्तुत किया गया। सभी में जबरदस्त उत्साह है। बाहर के दर्शनार्थी भी निरंतर आते जा रहे हैं। स्थानीय कर्मठ भाई बहन पूरी तरह सेवा में लगे हैं। 27 अप्रैल को प्रातः 9:30 बजे से केशर रस्म संभावित है। आज श्री अरिहंत मार्गी महिला महासंघ की लक्की ड्रॉ में सोने के 9 उपहारों द्वारा सम्मानित किया गया। आज मध्याह्न में नररत्न श्री राजपाल जी, नररत्न श्री राम कुमार जी, नररत्न श्री नरेंद्र जी एवं इनसे जुड़े श्री पवन जी जैन आदि मध्याह्न के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी। गुरु दर्शन किए, प्रवचन श्रवण किया एवं लक्की ड्रॉ निकालकर उपहारों से महिलाओं को सम्मानित किया। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हों।